कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हम आप सबको रविवार के संडे फेस्ट कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं सातवें स्कंद के सातवें अध्याय 19वां श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्रोपाय सहस्राणां अयं भगवतोदितः यदीश्वरे भगवति यता यैरञ्जसा रतिः। ऑफ द डिफरेंट प्रोसेसेस रेकमेंडेड फॉर एंटैंगलमेंट फ्रॉम मटेरियल लाइफ, द वन personally explained and accepted by the Supreme Personality of Godhead should be considered all perfect. That process is the performance of duties by which love for the Supreme Lord develops. इधर बता रहे हैं प्रहलाद महाराज जी कि वेदों में अनेक तरीके बताए गए हैं इस भौतिक दुनिया के चंगुल से मुक्त प्राप्ति करने के लिए। उनमें से जो भगवान खुद समझा है शास्त्रों में वो ही मार्ग सबसे बहुत अच्छा मार्ग है। और वो क्या है मार्ग बताते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने कर्तव्य को इस तरह से निभाना चाहिए जिससे उसके हृदय में भगवत प्रेम जागृत हो। एक भक्त ने हमें सुझाव दी थी कि आज हमें क्योंकि अगले हफ्ते नरसिंह चतुर्दशी है इसलिए सो वन डिवोटी वन रामानंद प्रभु टोल्ड मी दैट आई शुड स्पीक ऑन प्रिपेयरिंग अवर कॉन्शियसनेस फॉर नरसिंह चतुर्दशी। सो आई विल स्पीक ऑन दैट क्योंकि एक हफ्ते के बाद हम मनाने वाले हैं नरसिंह चतुर्दशी, इसलिए इसके संबंध में कुछ बताना चाहेंगे। हम किसी भी उत्सव जो मनाते हैं अगर हम उसका पूरा लाभ हम उठाना चाहते हैं तो उस उत्सव के संबंध में हमें थोड़ा बहुत ज़रूर मालूम होना चाहिए। जैसे एक भक्त बता रहे थे मायापुर में जब हम विग्रहों का दर्शन करते हैं कभी कभी लोग घंटों घंटे खड़े रहकर विग्रहों का दर्शन करते हैं, बहुत अच्छा है उनको, उनको रुचि भी है भगवान के विग्रह दर्शन करने की। लेकिन जब हम दर्शन करना चाहते हैं हम किस तरह भगवान के दर्शन करना चाहिए उसको हमें शास्त्र से जानना चाहिए। जैसे हम राधा कुंज बिहारी के दर्शन करते हैं लेकिन जब हम दर्शन करते हैं जब हमें भगवान की महिमा मालूम होता है तभी हम भगवान को सही ढंग से हम दर्शन कर पाएंगे उनकी। जैसे हर एक व्यक्ति जो है इस दुनिया में वो मशहूर बनता है कैसे, उसके शक्तियों के कारण, है ना। अगर किसी व्यक्ति के अंदर शक्ति कुछ खास शक्ति नहीं है वो मशहूर नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर कोई बहुत मशहूर क्रिकेट खेलने वाला व्यक्ति है कोई आकर इधर हमारे बीच में बैठा है इधर, अगर आपको पता चलेगा कि वो आया है आज इधर, क्या लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे? है ना, आपको मालूम है अगर सचिन आए हैं इधर आज प्रवचन सुनने के लिए, अगर हम अनाउंस करते हैं माइक में, सब लोग क्या करेंगे प्रवचन के बीच में? उसकी ओर उनका पूरा नज़र जाएगा। हाँ, वो कैसे प्रवचन सुन रहे हैं, क्या ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं कि नहीं, क्या बीच में उठकर चले गए हैं, इस तरह। तो वो भी यही आप जैसे ही आदमी जैसे दिखता है, लेकिन उसके ऊपर क्यों लोगों को इस तरह ध्यान जाता है? क्योंकि उसके अंदर शक्तियाँ हैं, स्पेशल शक्ति है, इसके कारण लोग आकर्षित होते हैं। अगर कोई क्षुद्र जीव के अंदर कुछ शक्ति है और वो भी थोड़े समय के लिए है, अगर ऐसे जीव इतना मशहूर हो सकता है तो परम भगवान जो हैं जिनके अंदर अनेक शक्तियां हैं, विविध शक्तियां हैं, जो सदा हमेशा के लिए उनके अंदर है शक्तियां ऐसे, वो कितने मशहूर होंगे भगवान। ऐसे भगवान के संबंध में अगर हम जानेंगे नहीं तो हम उनको सही तरह से हम दर्शन नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए अगर इसी सचिन को अगर हम लेके जाते हैं कांगो फॉरेस्ट, कांगो के जंगल में, कांगो मालूम है आपको, कांगो जंगल इसे अफ्रीका में है, उनको लेके जाते हैं कांगो जंगल में, उधर सब बैठे हुए हैं जो ट्राइबल्स, क्या बोलते हैं ट्राइबल्स को, आदिवासी लोग बैठे हैं, अगर उनके बीच में इनको लेके जाते हैं क्या मशहूर होंगे उनके बीच में? उनको शायद मालूम भी नहीं होगा, उनको क्या मालूम उनके बारे में, कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन जिनको एक व्यक्ति की शक्तियाँ मालूम हैं वो लोग सही आंखों से देख सकते हैं। ऐसे ही मैंने बताया शुरुआत में कि भगवान के संबंध में हम जब जानते हैं तभी हम उनकी सही तरह से गुणगान कर सकते हैं, साथ साथ हमारी चेतना में भी विकास आ सकता है। इसलिए शास्त्र दिया गया है, शास्त्र में भगवान जैसे भगवद गीता में भगवान अपने बारे में बताते हैं इतना अच्छे ढंग से, तो इसको हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए। तो बता रहे थे मायापुर के एक भक्त कि जब हम दर्शन करते हैं भगवान की विग्रह की तो हम जानकारी के साथ हम दर्शन करेंगे तो बहुत हमें लाभ प्राप्त होगा। ऐसा अगर नरसिंह चतुर्दशी आने वाला है तो हम सही ढंग से नरसिंह और प्रहलाद की ये जो लीला है इसको हम हृदय में स्वीकारेंगे तो बहुत हम अच्छी अच्छे भावना के साथ हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। हर एक भक्त को ये जो उत्सव मनाते हैं, फेस्टिवल होता है, इसको किस ढंग से अपनाना चाहिए? ऐसे अपनाना चाहिए कि एक सुंदर मौका है जिससे हम हमारे हृदय को और शुद्धिकरण कर सकते हैं, क्योंकि जीवन का लक्ष्य है हृदय को शुद्धिकरण करके पूर्ण शुद्ध होकर हम भगवत धाम लौट चलना, वो जीवन का लक्ष्य है। इसलिए हर एक उत्सव जब हम मनाते हैं हम महान व्यक्तियों के बारे में हम चर्चा करते हैं, ऐसे महापुरुषों के बारे में कथा होता है, ये सब सुनकर हम धीरे 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 हम भी अपने जीवन में शुद्धता ला सकते हैं। ये प्रहलाद और हिरण्यकशिपु की कथा जो आता है श्रीमद् भागवत में, ये भागवत की महानता पहले ही समझना आवश्यक है कि प्रहलाद हिरण्यकशिपु के बारे में समझने के पहले, क्योंकि वेदों में इतने ग्रंथ हैं, इतने लाखों लाख श्लोक हैं, इतने विविध ग्रंथ हैं वेदों में, को किसी आदमी को शंका हो सकता है कि किस चीज़ को मुझे स्वीकारना चाहिए। जैसे प्रभुज बताते हैं धर्म जो होता है वो शुरू होता है मानव शरीर में, अगर कोई धर्म नहीं करता है तो वो मानव में गिना नहीं जाता है, अगर उसको दो पांव भी हो उस फिर भी मानव में गिनाया नहीं जाता है, वो पशुओं में गिना जाता है। ऐसे व्यक्ति को शास्त्र में बताया गया है द्विपाद पशु, ऐसे बताते हैं। हम सिर्फ चार पाद पशु देखा हमने, लेकिन द्विपाद पशु किसको माना जाता है? जो धर्म नहीं करता है। लेकिन जो व्यक्ति धर्म को जानता है और अपने जीवन में धर्म को अपनाता है वो मनुष्य माना जाता है। तो वेद पुराण ये सब किसके लिए किए गए हैं? मनुष्य के लिए। और उसमें भी जैसे मैंने बोला इतने लाखों लाख श्लोक हैं, जैसे अगर आपको बोला जाएगा कि जंगल में आपको जो व्याधि के लिए जड़ी बूटी चाहिए वो मिलेगा, किधर जाकर कैसे ढूंढे, किसको स्वीकारे, ये किसी को शंका हो सकता है। शास्त्र में प्रस्थान त्रय ऐसे बोलते हैं, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान, तीन प्रस्थान हैं। अभी श्रुति में जैसे चार वेद आते हैं और उपवेद आते हैं और उपनिषद आते हैं श्रुति में। श्रुति का मतलब है सुनकर स्वीकारना, हम सुनते हैं और समझ जाते हैं और उसको स्वीकारते हैं, उसको श्रुति प्रस्थान बोलते हैं। और इन वेदों में जैसे साम वेद में इतने देवी देवताओं की विविध पूजाओं के बारे में बताया गया है, और ऋग्वेद में भगवान के बारे में गीत हैं जो ऋग्वेद में सामवेद में गाते हैं, और ऋग्वेद में भगवान की गुणगान के श्लोक हैं। और इस तरह यजुर्वेद हैं, उसमें भी अनेक रीति रिवाज दिए गए हैं, और अथर्ववेद में रक्षा के लिए स्तोत्र हैं, अनेक स्तोत्र हैं। ऐसे इस तरह वेदों में ऐसे बताया गया है कि 100,000,000 श्लोक हैं ऐसे चार वेदों में। और उपवेद भी है, जैसे उपवेद में ऋग्वेद के उपवेद में आता है आयुर्वेद, जैसे सामवेद के उपवेद में आता है गंधर्व वेद, जैसे यजुर्वेद के उपवेद में आता है धनुर्वेद, और अथर्ववेद के उपवेद में आता है स्थापत्य वेद। तो हम देखते हैं वेदों में ऐसा ही नहीं, सिर्फ भगवान के बारे में बताया गया है, और भी अनेक चीज़ हैं। जैसे गंधर्व विद्या में नृत्य और नाटक ये सब आते हैं गंधर्व वेद में। जैसे आयुर्वेद में हमारे शरीर की तबीयत के बारे में भी इतने बहुत कुछ वर्णन है उसमें। हाँ, और स्थापत्य वेद में शिल्पकार शिल्प सब आता है। इस तरह वेद में अनेक विषयों के बारे में चर्चा की गई है। और ये जो उपनिषद जो है ज्ञानकंड, उसको ज्ञानकंड कहा गया है, उसमें 108 उपनिषद हैं। तो ये दोनों को श्रुति बताया जाता है। अगर कोई व्यक्ति ने श्रुति को सुना है फिर भी उसको समझावट नहीं आया है, नहीं तो उसको मानने में थोड़ा तकलीफ है, तो उन लोगों के लिए दिया गया है न्याय प्रस्थान। न्याय का मतलब है जो तर्क वितर्क वितंड इन चीज़ों के द्वारा समझा गया है परम सत्य के बारे में, उसमें आता है वेदांत सूत्र। वेद अंत का मतलब है वेदों का अंत है, वे सब पढ़ने के बाद उसका सारांश जो है वो न्याय में दिया गया है वेदांत सूत्र। और ये वेदांत सूत्र में सिर्फ सूत्र दिए गए हैं, बहुत छोटे छोटे सूत्र, जैसे रसो वाई सह कितना ही दिया गया, अता तो ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसे छोटे छोटे सूत्र। जैसे अगर कभी कभी आप नोट्स बनाते हैं, बहुत लंबे नोट्स बनाते हैं प्रवचन में, कभी कभी 7-8 पेज चलता हो, उसके बाद आप क्या करते हैं अंत में थोड़ा अगर आपको बोलना होता तो उसको संक्षिप्त रूप में एक छोटा सूत्र बना लेते हैं, उसके लिए सिर्फ शीर्षक ले लेते हैं। इसलिए वेदांत सूत्र भी, वेद में लाखों लाख श्लोक हैं, सबको पढ़ने के लिए किसको समय मिलने वाला है, तो अंत में ये वेदांत सूत्र दिए गए हैं सूत्र के समान। जैसे अगर कोर्ट में इंडियन पिनल कोड ऐसे वो कोड करते हैं, वो सूत्र को कोड करते हैं, ऐसे वेदांत सूत्र भी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ने श्रुति को सुना है, न्याय को भी सुना है, फिर भी इन दोनों को सुनने के बाद भी कठिनता हो सकती है, इसलिए स्मृति दिए गए हैं। स्मृति में इतिहास हैं, पुराण हैं, वेदांग हैं, पंचरत्न हैं, ऐसे अनेक चीज़ें उसमें हैं। जैसे इतिहास में रामायण है, महाभारत है। तो वेदों में हम देखेंगे वेद क्या करते हैं लोगों के लिए। जैसे वेदों को एक माँ से तुलना किया गया है, माँ क्या करती है, बच्चे को अगर कुछ दवाई पिलाना होता है तो बहुत बुद्धिमत्ता से थोड़ा मिठाई के साथ साथ उसको दवाई दे देती है माँ। इस तरह वेदों में भी आप देखते हैं अगर कोई व्यक्ति भगवान की शरण नहीं जाना चाहता है तो वेद क्या करते हैं ऐसे व्यक्ति को, वेदों को मालूम है अच्छी तरह कि हर एक जीव इस दुनिया में किसके पीछे भटक रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति के पीछे। इसलिए वेदों में भी ये वर्णन है कैसे तुम धर्म को अपनाकर इंद्रिय तृप्ति प्राप्त कर सकते हो। कोई सोच सकता है कि क्या धर्म को कोई इस्तेमाल करेगा इंद्रत्व प्राप्त करने के लिए? धर्म तो करना चाहिए भगवान की संतुष्टि के लिए, लेकिन वेद में बताया गया है कि अगर तुमको इंद्रत्व भी चाहिए तुम धर्म को अपनाओ। जैसे सूर्य की उपासना किया जाता है व्याधि से मुक्त होने के लिए, अच्छा शिव जी की उपासना किया जाता है धन दौलत के लिए, जैसे देवी की उपासना की जाती है ऐसे ऐसे पंचोपासना है विष्णु सूर्य गणेश देवी और शिव, इनको इनके उपासना पंचोपासना बताया गया है। तो ये सब पुराण में भी दिए गए हैं। जैसे आप देखेंगे लोगों के अंदर बहुत रुचि है राजनीति कूटनीति में लोगों को, इसलिए ये पुराणों में इतिहासों में ये महाभारत दिया गया है। ये महाभारत जो इतिहास है, इतिहास का मतलब हिस्ट्री, हिस्ट्री का मतलब है जो सारे महाभारत युद्ध जो हुआ उसके संबंध में जो महाभारत में दिया गया है उसमें इतना कूटनीति है, उसमें लोगों को बहुत रुचि मिलता है पढ़ने में। इसलिए बताते हैं वेद व्यास जी द्विज बंधु नाम शूद्र, ऐसे जो लोग कूटनाटी में बहुत रुचि लेते हैं वो लोग कभी कभी महाभारत में बहुत रुचि लेते हैं, क्योंकि उनको सुनने में बहुत रुचि आता है। तो ये भाई भाई हैं एक ही घर में, एक एक भाई को पदवी मिल गया और दूसरे भाई को भगा दिया, और वो सोचते हैं कि जंगल में गए हैं और इन और उसमें स्त्री भी है, उसमें द्रौपदी है, द्रौपदी का अपहरण किया गया। तो लोग इन चीज़ों को बहुत रुचि से सुनते हैं महाभारत को जब सुनते हैं। लेकिन आप देखेंगे महाभारत का क्लाइमैक्स क्या है, क्लाइमैक्स का मतलब है सबसे ऊंचा पॉइंट क्या है, कुरुक्षेत्र युद्ध कौरवों का और पांडवों के बीच में जो हुआ। इसलिए वेदव्यास जी जब बताते हैं भगवान कृष्ण इसे आयोजन करते हैं, उस कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले भगवद्गीता बोला गया, क्योंकि लोग पढ़ेंगे पढ़ेंगे पूरा महाभारत, जब युद्ध के बारे में पढ़ने के लिए इच्छा करेंगे तभी भगवद्गीता सुनेंगे, दवाई मिल जाएगा उनको तुरंत, क्योंकि उस भगवद्गीता में बताया गया है भगवान कौन है, भगवान कृष्ण के संबंध में ऐसे बताते हैं। तो इस तरह इतिहास है रामायण महाभारत और पुराण है। पुराणों में छह पुराण तमोगुणी लोगों के लिए है, छह पुराण रजोगुणी लोगों के लिए, छह पुराण सत्वगुणी लोगों के लिए है ऐसे, जिसमें अनेक देवी देवताओं की पूजाओं के बारे में बहुत विविध वर्णन है उसमें। तो जो लोग भौतिक इच्छा लेकर धर्म को करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये सब पुराणों में इतना विषय दिया गया है, तुम इस देवता की पूजा करो तुमको ये प्राप्त होगा ऐसे। इसलिए ये चार पुरुषार्थ के बारे में हम अक्सर सुनते हैं, क्या क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो लोग साधारण रूप से इस दुनिया में धर्म किस लिए करते हैं, अर्थ को प्राप्त करने के लिए। उनको मालूम है कि अगर मैं यज्ञ दान तप वगैरह करूँगा वो सब मुझे वापस आएगा बाद में, अगर मैं देवी की पूजा करूँगा किसी दिन व्रत करूँगी तो हमें क्या प्राप्त होगा, कुछ लाभ भौतिक लाभ प्राप्त होगा इस तरह। तो प्रभुपाद जब अमेरिका गए प्रभुपाद ने बोला कि इधर मैं देख रहा हूँ देखो चर्च मास्क मंदिर सब अभी आजकल खाली पड़ गए हैं। कारण क्या है, लोग सोचते हैं कि धर्म की क्या ज़रूरत है, वैज्ञानिक लोग हमें सब सुख सुविधा दे रहे हैं धर्म की ज़रूरत नहीं है। इसलिए लोग चर्च मास्क मंदिरों को छोड़कर उसके बदले में क्या कर लिया है, लोग कंपनी सिनेमाघर दुकान ये सब खोला है। लोग समय किधर बिताते हैं ज़्यादा, या तो सिनेमाघर में नहीं तो कंपनी में नहीं तो अपने दुकान में तो किस तरह समय बिताते हैं। तो प्रभुपाद ने देखा, क्योंकि इससे हम समझ सकते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है ये चारों का एक ही लक्ष्य है, इंद्रिय तृप्ति, चारों पुरुषार्थों का एक ही लक्ष्य है इस तरह। हालांकि अनेक पुराण दिए गए हैं, इतिहास दिए गए हैं, वेद हैं उपनिषद ये सब देने के बाद भी लोग जो है इन चीज़ों को इस्तेमाल करके लोग अर्थ को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके द्वारा काम को भोगना चाहते हैं लोग, यही उनका लक्ष्य है। जब कोई हताश हो जाता है तभी वो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, जिसका मतलब है वो भगवान में लीन होना चाहते हैं, नहीं तो भगवान बनना चाहते हैं, वो भी दूसरे तरह का इंद्रिय तृप्ति है वो भी। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस तरह ये सब चीज़ों को जब हम देखते हैं शास्त्रों को उनमें से हम देख सकते हैं ये एक ऐसा शास्त्र है जो सब शास्त्रों के ऊपर बैठा हुआ है, क्या है वो? श्रीमद् भागवत। क्योंकि ये एक पेड़ से तुलना करके बताया गया है इसे, कि जिसमें पेड़ के पेड़ में डाली हैं, अलग अलग डाले हैं, इस तरह कर्म कांड है, उपासना कांड है, ज्ञान कांड है, अलग अलग कांड है, अनेक वेद हैं, इन चीज़ों को तुलना किया गया है डालियों से। और उसी पेड़ में जो फूल आते हैं, अलग अलग फूल आते हैं, उसको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चीज़ों से तुलना किया गया है। और उन फूलों के अंदर से क्या आता है? फल आता है, जो उतना मीठा फल नहीं लेकिन कड़वा फल है, उसको तुलना किया गया है उपनिषदों से, वेदांत से तुलना किया गया है। वेदांत और उपनिषद को क्यों ये कच्चा आम जब होता है ना, उससे तुलना क्यों किया गया है? क्योंकि वेदांत में जो दिया गया सूत्र है, उसको पढ़कर आदमी कुछ जान नहीं सकता है ज़्यादा, क्योंकि वह सब छोटे छोटे सूत्र हैं, लेकिन उनको समझना बहुत कठिन है साधारण लोगों को। जैसे कभी कभी आप कोर्ट में जब जाते हैं, अगर आप लायर बनते हैं, कोई लायर बनते हैं, तो आपको सूत्रों को याद करना होता है, सूत्र को पढ़ना बहुत कठिन है, कभी कभी उसको याद करना बहुत कठिन है, लेकिन उसका एक उदाहरण दिया होता है, उदाहरण को पढ़कर जब हम सूत्र को याद करते हैं बहुत आसान हो जाता है। जैसे दिया गया है, कोई दो लोग हैं, रामू और सोमू, और रामू सोमू की ज़मीन में यह कर दिया एंक्रोचमेंट, और एंक्रोचमेंट अतिक्रमण किया, इसलिए सोमू ने रामू के हाथ काट दिया, तो उन अभी सोमू को क्या दंड दिया जाएगा? इस तरह एक उदाहरण दिया जाता है, तभी वो जो थियरम जो होता है, वो इंडियन पिनल कोड, याद करना बहुत आसान है एक उदाहरण के द्वारा। इस तरह वेदांत में जो भी दिया गया है सूत्र, उन सूत्रों को समझाने के लिए पुराण लिखे गए हैं, जिसमें बहुत प्रायोगिक अनेक महान भक्तों के जीवन से जीवन की कथा दी गई है पुराणों में, तो बहुत सरल है समझने के लिए उसके द्वारा। इसलिए बताया गया है कि वेदांत और उपनिषद जो है वो एक कड़वा फल से तुलना किया गया है, लेकिन भागवत जो है, श्रीमद् भागवत, वो पका हुआ फल है, उससे तुलना किया गया है। इसलिए बताया गया है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रवसम युतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। इस तरह भागवत की शुरुआत में बताया गया है, तीसरे श्लोक में बताया गया है, निगम का मतलब वेद, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। अगर कोई आदमी वेदों को चुनता है अपने जीवन में जानकारी के लिए, वो भटक जाएगा, क्योंकि वेद बहुत बड़े हैं। जैसे अमेरिका में आजकल लोग वेदों को जानना चाहते हैं, लेकिन वो लोग किसकी संशोधन करने वाले हैं? आपको अनेक अमेरिकी लोग कामसूत्र को लेकर उसमें रिसर्च कर रहे हैं उसमें, क्योंकि वेद में सब चीज़ें हैं जानने के लिए। तो अगर कोई व्यक्ति अपने आप समझना चाहता है तो बहुत कठिन है वेद। लेकिन इधर बताया गया है, अगर सब वेद बहुत बड़े हैं पढ़ने के लिए, आपको क्या पढ़ना चाहिए? निगम कल्पतरोर गलितम फलम, उस पेड़ का पका हुआ फल क्या है? श्रीमद् भागवतम। और बताते हैं, सुख मुखात अमृत द्रवसम युतम। वो बताते हैं, सुख जो तोता है, आपको मालूम है कोई कोई फल है उसको जब तोता अपने चोंच से छूता है तभी फल और भी मीठा बन जाता है वो। इस तरह ये भागवत जो दिया गया वेद व्यास जी के द्वारा, उसको सुखदेव गोस्वामी ने दोहराया उसको। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कौन है? वो राधा रानी के तोते हैं भगवत धाम में। इसलिए जब वो छूते हैं ये भागवत और भी मधुर बन गया है, इस तरह बताते हैं, सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम। और ये द्रव है, द्रव का मतलब है जो बहुत आसान है पीने के लिए, खाने के लिए बहुत आसान है, द्रव संयुतम। पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत में भगवान और भक्त की जो रस जो है, भक्ति रस, इसके बारे में वर्णन दिया गया है, तरह तरह के रसों के बारे में। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, रसिक जनों को बुलाया जा रहा है इधर, आमंत्रण दिया जा रहा है इधर, आओ और भागवत को सुनो, इस तरह। और ये भागवत में भागवत की क्या श्रेष्ठता है, वो भागवत के दूसरे श्लोक में बताया गया है। धर्म प्रोज्जित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्र योन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः हृद्यो हृदिवते तत्र कृतिभिः शुश्रूषसि शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। इसमें बताया गया है धर्म प्रोज्जित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। हम शुरुआत में हम बता रहे थे आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष जो बताया हमने, ये चार पुरुषार्थ चारों इंद्र तत्व की ओर मुड़े हुए हैं। जो भी ये सब करते हैं वो इंद्र तत्व के लिए कर रहे हैं। देव देवता की पूजा लोग क्यों करते हैं? इंद्र तत्व के लिए करते हैं, कुछ भौतिक प्राप्ति के लिए। लेकिन श्रीमद् भागवत ऐसा नहीं है, ऐसे भागवत में के अंदर ही बताया गया है। क्योंकि ये 18 पुराणों में सब पुराण अलग देव देवताओं के बारे में बताते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण भगवान परम भगवान जो है कृष्ण उनके संबंध में बताया गया है भागवत पुराण में। और ये पुराण को पंचम पुरुषार्थ ऐसे बताया गया है, भक्ति को पंचम पुरुषार्थ है, चार पुरुषार्थों से भी परे है पंचम पुरुषार्थ जो भक्ति है वो सिखाया गया है भागवत में। और बताते हैं धर्म प्रोज्जित कैतव, ऐसे धर्म कैतव धर्म माना जाता है जो भौतिक प्राप्ति के लिए की जाती है। ऐसे धर्म इसको भौतिक धर्म माना जाता है। लेकिन भागवत का धर्म किसके लिए है? भागवत धर्म ऐसे लोगों के लिए जो निर्मत्सर हैं। ये निर्मत्सर कौन है? इस भौतिक दुनिया में हम देखते हैं कि हर व्यक्ति इस दुनिया में एक तरह की स्पर्धा में है। आदमी आदमी में स्पर्धा है, घर घर में स्पर्धा है, एक देश और दूसरे देश के बीच में स्पर्धा है। हर एक व्यक्ति स्पर्धा करता है किस लिए? एक ऊंचे पदवी को प्राप्त करने के लिए। लोगों को इच्छा होता है जितना हो सकता है उतना में इकट्ठा करो और जितना हो सकता है उतना मेरे शक्ति को मैं फैलाऊं। क्योंकि भगवान सब शक्तियों के नेता हैं, भगवान शक्तिमान हैं, लोग भी बहुत शक्तिमान बनना चाहते हैं। हम देख सकते हैं हर एक व्यक्ति के अंदर ये आकांक्षा है कि भगवान के अंदर जो 6 ऐश्वर्य हैं उन्हीं 6 ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के लिए इस दुनिया में हर एक जीव तड़प रहा है। सब जीव इस दुनिया में सुंदर बनने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, सब जीव शक्तिशाली बनने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, सब जीव मशहूर होने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। हम देख सकते हैं हर एक जीव के अंदर, इसलिए बहुत बड़ा स्पर्धा है इस दुनिया में। और इस स्पर्धा में लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, एक देश दूसरे देश को मार रहा है, हम देख सकते हैं इस दुनिया में। लेकिन श्रीमद् भागवत बताया गया है कि ऐसे लोगों के लिए है जो इस स्पर्धा में भाग नहीं लेते हैं। वो क्यों? उनका लक्ष्य अलग है। क्या है लक्ष्य? परम धाम जो है भगवान की, उस धाम को प्राप्त करके भगवान की सेवा करना, ये उनका लक्ष्य है। इस दुनिया में रहते हुए इस तरह के झगड़ा करके पोजीशन, एक बड़े पदवी प्राप्त करना और सब चीज़ों को इकट्ठा करना, ये उनका लक्ष्य नहीं है। तो ये पहले पहले बताया गया है। ये दो नाम है ना, हिरण्यकशिपु और प्रहलाद, ये दो नाम से आप समझ सकते हैं। हिरण्यकशिपु का मतलब है, हिरण्य का मतलब है सोना, कशिपु का मतलब है बिस्तर, जो नरम बिस्तर है, जिसे तुलना क्या बताया जाता है, जो व्यक्ति स्त्री और पैसे सोना इन चीज़ों से आकर्षित होता है उसको हिरण्य कशिपु ऐसे बताया गया है। और प्रहलाद का मतलब क्या है? जो व्यक्ति आनंद लूटता है ह्लाद, ह्लादिनी शक्ति से। ह्लादिनी शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी है, जो भगवान की ह्लादिनी शक्ति है, नहीं तो आनंद की शक्ति है। तो भगवान की भक्ति में दिव्य आनंद प्राप्त करने वाला व्यक्ति है प्रहलाद। तो एक व्यक्ति है इधर प्रहलाद जो दिव्य आनंद में डूबा हुआ है, दूसरा व्यक्ति है हिरण्यकशिपु जो भौतिक सुख प्राप्ति में डूबा हुआ है। इस तरह ये नॉर्थ और साउथ ध्रुवों के समान है, दो ध्रुवों के समान है, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के समान है दोनों। क्योंकि एक है भौतिक प्राप्ति के पीछे पड़ा है और दूसरा है भगवान के दिव्य आनंद में डूबा हुआ है। इसे इसलिए बताया गया है धर्म प्रोज्जित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, ऐसे लोगों के लिए दिया गया है श्रीमद् भागवत। इसलिए श्रीमद् भागवत बताया गया है कि ये शुद्ध है, इसमें शुद्ध भक्ति दिया गया है। जैसे कभी कभी हम सोने खरीदते हैं दुकान में, लोग पूछते हैं ये क्या 24 कैरेट गोल्ड है, 24 कैरेट सोना है, लोग पूछते हैं ना, क्योंकि देखना चाहते हैं कि इसमें मिलावट नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप कुछ पदार्थ खरीदते हैं दुकान में, खाने के पदार्थ, तो दुकान में किसी किसी दुकान में लिखते हैं बाहर है ना, शुद्ध घी से बनाए हुआ पदार्थ है ना। कभी कभी ज़्यादा भीड़ नहीं रहता उधर, बहुत कम लोग आते हैं, फिर भी लोग खरीदते हैं। प्रभु जी लिखते हैं उनके एक तात्पर्य में, अगर कोई मिठाई का दुकानदार कोई मिठाई बनाता है शुद्ध घी में, हालांकि कम लोग जाएंगे लेकिन ज़रूर उसको स्पॉन्सर करने वाला व्यक्ति मिल जाएंगे उसको, क्योंकि कुछ लोग ज़रूर हैं जो क्या चाहते हैं, शुद्ध घी से बनाए हुआ पदार्थ चाहते हैं, इसलिए ऐसी दुकान भी है ऐसे। और दूसरा दुकान है जिधर मिठाई बिकाया जाता है जो मिलावट तेल से बनाए हुआ, जो तेल ऑलरेडी एक हफ्ता यूज़ किया गया, बार बार उसी को यूज़ करता है, ऐसे बनाया हुआ, उस दुकान के पदार्थों का हम खाएंगे तो क्या होगा, याद ही हो जाएगा है ना। लेकिन शुद्ध घी के पदार्थ को खाएंगे आप तो तंदुरुस्त बन जाएंगे आप। इस तरह श्रीमद् भागवत को जो पिएंगे, भागवत के रस को, तो वो शुद्ध भक्ति में स्थित होकर इस भौतिक दुनिया की भव रोग जो है उससे मुक्त होकर भगवत धाम लौट जाएगा, जो भी इसको अपनाते हैं श्रीमद् भागवत को। लेकिन दूसरे देवी देवता की जो पूजा जो दिया गया पुराणों में, उसके पीछे जो पड़ता है व्यक्ति भौतिक लाभ प्राप्ति के लिए, वो किस तरह की मिठाई कर रहा है, जो तेल से बनाया हुआ जो शुद्ध नहीं है उसको खा रहा है ऐसे व्यक्ति, इसके कारण उसको व्याधि होने वाला है। क्या व्याधि? बब रोग, बहुत व्याधि उसको प्राप्त होने वाला है ऐसे। इसलिए बताया गया है श्रीमद् भागवत ऐसे लोगों के लिए है जो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम तापत्र योन्मूलनम, बताते हैं इसमें वास्तव वस्तु के बारे में वर्णन है, जो परम सत्य है। परम सत्य से जो दूसरे अलग चीज़ें वो सब अवास्तव वस्तु है, सिर्फ परम सत्य ही वास्तव वस्तु है। और इसे त्रिविध ताप से, त्रिविध ताप को कैसे निकलता है, जड़ से निकाल देता है त्रिविध तापों को, अध्यात्मिक अति भौतिक अति देव के क्लेशों को। और एक व्यक्ति को ये भगवान के दिव्य प्रेम प्रदान करता है श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत पुराण की। इसलिए अगर ये ग्रंथ है जिसको हम अपने जीवन में अपनाना चाहिए तो क्या करना चाहिए, इसलिए बताया गया है इसी श्लोक में, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परे ईश्वरः। यह श्रीमद् भागवत पुराण को छोड़कर और दूसरे ग्रंथ की क्या जरूरत है, क्योंकि ये ग्रंथ कब लिखा गया, जब वेद पुराण उपनिषद सब पूरा होने के बाद फिर भी वेद व्यास जी बैठे थे बहुत शोकाग्रस्त होकर। तभी उनके गुरु आए नारदमुनि, नारदमुनि ने पूछा तुम क्यों शोकामग्न हो, तभी उन्होंने बोला कि पता नहीं मैंने सब लिख दिया, ये सब वेद पुराण लिखने के बाद भी मैं बहुत पता नहीं मेरे हृदय में शोक होता है, आप तो मेरे गुरु हो। जिस तरह सूर्य बाहर की चीज़ों को जानता है और हवा हमारे अंदर के शरीर को जानता है, इस तरह आप हवा और सूर्य के समान हो, आप ही गुरु हो, आप बताओ मेरे हृदय में क्यों शोक होता है। तभी नारद ने बोला देखो तुमने एक शुद्ध शास्त्र को रचा, अभी तक उसको रचाया नहीं है, इसलिए आपको शोक हो रहा है। इसलिए उन्होंने बोला कि तुम ऐसे शास्त्र को लिखो जिसमें पूरा भगवान की गुणगान करते हो, ऐसे उन्होंने बताया, तभी उन्होंने भागवत को लिखा है। तो हम देख सकते हैं एक्चुअली ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इसलिए हम सिर्फ खास एक ही चीज़ हम बता रहे हैं आज, क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष में जो फंसे हुए हैं लोग वो, और दूसरा है शुद्ध भक्ति करने वाले, इनमें फ़र्क हम देख सकते हैं। जैसे हम देखेंगे कभी कभी लोग घोर तपस्या करते हैं पूजा करते हैं किसी व्यक्ति को खुशी करने के लिए। जैसे हम देखते हैं हिरण्यकशिपु ब्रह्मा को खुशी करने के लिए उसने घोर तपस्या की, लेकिन आप देखते हैं उसके पहले उसने क्या बोला अपने लोगों को, अपने सैनिकों को बुलाकर उसने बोला, यत्र यत्र द्विजा गावो वेदावर्णा शमक्रिया तम तम जनपदम जात संदीपयत वृश्चत। उसने बोला अपने लोगों को, देखो यत्र यत्र द्विजा गावो, जिधर भी तुम देखोगे ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं उस यज्ञ को नष्ट करो, जिधर तुम देखोगे गाय घूम रहे हैं उन गायों को मारो, और जिधर अच्छी तरह आश्रम बनाए गए हैं आश्रमों को तोड़ो, और जो पुल बांधा है पुल को तोड़ दो, और जो पेड़ हैं अच्छे अच्छे फल देते हैं जैसे जैक फ्रूट, बड़े से जैक फ्रूट फनस नहीं तो आम, इस तरह अच्छे पेड़ हैं उन पेड़ों को काट डालो, जो बबुल के पेड़ हैं उनको छोड़ दो, ऐसे इस तरह उसने अपने लोगों को बोला जो वर्णाश्रम को नाश करने के लिए। कारण क्या है? उसने बोला, हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मैं सब देवताओं को जो लोग पूजा करते हैं उसको मैं अंत कर दूंगा ताकि सब देवता सूख जाएंगे, और मैं विष्णु को भी, उसने सोचा मैं विष्णु को भी मार दूंगा। जब पेड़ को जड़ से काटा जाता है पूरा पूरा पेड़ सूख जाता है, इस तरह मैं विष्णु को मार दूंगा। इस लक्ष्य से उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की, जाकर बहुत घोर तपस्या किया हिरण्यकश्यपु ने, और बहुत सालों साल तपस्या की उसने। एक ओर से देखा जाए तो ब्रह्मा जी को संतुष्ट करने के लिए उसने तपस्या की, लेकिन हम देख सकते हैं उसकी हृदय में उसका मोटिवेशन क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, किस लिए उसने इस तरह की तपस्या किया है। हम प्रभुज बताते हैं इस दुनिया में हर एक व्यक्ति मास्टर बनना चाहता है, मास्टर मालिक बनना चाहता है, कोई नौकर नहीं रहना चाहता है। और इतना ही नहीं, जो मास्टर बनना चाहता है वो अपने मास्टर को भी टुकराना चाहता है वो इस दुनिया में। तो प्रभुज उदाहरण देते हैं, उन दिनों में मुगल के दिनों में जब भारत देश था मुगल के अंडर में, तभी उन दिनों में अनेक राजा आए मुगल के राजा, लेकिन क्या करते थे वो, एक राजा आता था उसके अंडर में कोई था और वो राजा को ही मारकर वो राजा बन जाता था। जैसे आप औरंगजेब को सुनते हैं, औरंगजेब अपने पिता को जेल में डाल दिया और भाई भाइयों को मार डाला है ना, और जो ताजमहल बनाया उनके सब हाथों को काट दिया। इस तरह लोग किसी को कुछ भी करते हैं जब अपने इंद्रिय तृप्ति को सामने रखते हुए, ऐसे इस तरह हिरण्यकश्यप भी घोर तपस्या की। ऐसा बताया जाता है कि उसके सारे शरीर में जो मांस है सब सूख गए हैं, पूरा हड्डी हड्डी था उसके शरीर में, और ऐसे चींटी का एक पहाड़ बन गया था उसके शरीर के ऊपर। तो ब्रह्मा जी जब आए तो अपने कमंडलू से पानी लेकर पानी डाला, तभी हिरण्यकश्यप बाहर आया, उसको सुंदर शरीर प्राप्त हो गया, तभी ऐसे बलशाली शरीर प्राप्त हो गया उसको, जैसे सोना जैसा सुनहरा रंग का बहुत अच्छा शरीर उसको प्राप्त हो गया। लेकिन दंडवत प्रणाम किया उसने ब्रह्मा जी को, और अनेक तरीकों से उसने ब्रह्मा जी की गुणगान की, लेकिन उसने क्या वर मांगा ब्रह्मा जी से आपको मालूम है। उसने ऐसे वर मांगा कि किसी भी देवता को पूजा नहीं होना चाहिए, सब देवताओं को जो पूजा किया जाता है वो सब मेरे लिए लोग करना चाहिए, ऐसे वर मांगा उसने। और मुझे कोई भी मारना नहीं चाहिए, कोई भी मारने की शक्ति किसी के अंदर भी नहीं होना चाहिए, दिन में नहीं रात में नहीं, महल के अंदर नहीं महल के बाहर नहीं, ऐसे अनेक चीज़ पूछा उसने। उसका आइडिया ऐसा था कि मैं अमर हो जाऊंगा इस तरह उसने, अगर अमर हो जाऊंगा तो मेरा राज्य चलेगा सारे तीनों लोकों में। और उसका इच्छा क्या था कि जो लोग पाप करते हैं वो स्वर्ग लोग जाना चाहिए, और जो लोग पुण्य करते हैं वो नरक में जाना चाहिए, ये उसकी इच्छा थी। और इतना तक ऐसे बताया जाता है कि पानी बरसाने वाला है इंद्र, और सुखाने वाला है वायु, और जलाने वाला है अग्नि, लेकिन इन तीनों को उसने बुलाया, इंद्र वायु और अग्नि, बोला कि आप लोग को अभी मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ आपको, आपको आप लोग रिजाइन करो अपनी नौकरी से चले जाओ, तीनों को मैं कंट्रोल करूँगा। क्यों? क्योंकि जब ताप ज़्यादा होता है उसको कम कर सकता हूँ मैं, अलग एयर कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, सूर्य अगर बहुत जलता है तो उसको तुरंत कम कर दो, अगर बारिश है तो बारिश को रोको, जब बारिश चाहिए बारिश को बुलाओ, इस तरह वो सारे प्रकृति के ऊपर उसका नियंत्रण करता था। ऐसा बताया जाता है कि भूमाता जो है भूमि, वो डर के मारे वो सब देती थी उसको, धान्य फल फूल सब देती थी, किसी भी सीजन भी नहीं हो फिर भी देती थी वो, ऐसे है सब देव देवता गिड़गिड़ाते थे उसके सामने। तो इस तरह हम देखते हैं हिरण्यकश्यपु ने बड़े तपस्या की, लेकिन उसका लक्ष्य क्या था, परम भोक्ता बनना, उस इच्छा से उसने ऐसा किया तपस्या। तो प्रभु जी एक उदाहरण देते हैं, कभी कभी आपने देखा है ये जो एक कीड़ा होता है बड़ी से बेड बग कटमल, ये कटमल जो होता है वो ये जो विंटर सीजन जो है सर्दी के समय में इतना पतला बन जाता है वो, है ना, ऐसे पेपर जैसे बन जाता है वो, इतना पतला है क्योंकि खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है उसको, बहुत पतला बन जाता है, कमज़ोर बन जाता है वो। लेकिन जब गर्मी आता है तभी बाहर आ जाता है और इतना खून पीता है बहुत मोटा बन जाता है वो। इस तरह अनेक तपस्वी होते हैं, वो लोग बड़े तपस्या करते हैं लेकिन उनके तपस्या का भी लक्ष्य है इंद्रिय तृप्ति, हम देख सकते हैं इस तरह। ऐसे ही है वृकासुर भी, वृकासुर भस्मासुर बोलते हैं, उसने भी ऐसे तपस्या की, ऐसे तपस्या की, आपने सुनेंगे जैसे वो बद्री केदारनाथ में जाकर उसने गंगोत्री में स्नान करके गीले शरीर के साथ तपस्या की, अपने ही शरीर के मांस को काटकर आग में डाली शिव जी की संतुष्टि के लिए। शिव जी ने सोचा कि ये क्यों इस तरह की घोर तपस्या कर रहा है ये व्यक्ति, लेकिन जब शिव जी नहीं आए तभी आप खड्ग लेकर वो अपने ही गले को काटने वाला था वो, तभी शिव जी आए। देखिए अपने अहंकार की तृप्ति को पूर्ति करने के लिए आदमी आत्महत्या भी कर सकता है, इतना इंद्रिय तृप्ति इतना प्रबल है व्यक्ति के अंदर। जब शिव जी आए उसके बाद उन्हें ऐसे वर मांगा कि किसी के भी सर को छूं उसका सर का विस्फोट हो जाना चाहिए पूरा ऐसे। उसके बाद वो शिव जी के पीछे भागने लगे क्योंकि उनकी इच्छा थी कि मैं उमा को प्राप्त करना चाहिए ऐसे। तो इस तरह लोग तपस्या करते हैं, धर्म करते हैं अर्थ को प्राप्त करने, काम को प्राप्त करने के लिए ऐसे। लेकिन प्रहलाद महाराज जो है वो नारद मुनि से ये श्रीमद् भागवत जो है इसमें जो बताया गया है भागवत धर्म उसको उन्होंने सुना था, इसलिए हम देख सकते हैं ऐसे जो भागवत धर्म को जो लोग सुना है उनका चेतना क्या है। ऐसे प्रभु जी अक्सर बताते थे इन द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस द मीन्स एंड द एंड आर सेम। इसका मतलब क्या है, भक्ति मार्ग में हम जो मार्ग जो अपनाते हैं और हमारा अंतिम प्राप्ति जो है प्रयोजन दोनों एक ही है। इसका मतलब है किसने पूछा प्रभा जी को अभी आप लोग हरे कृष्ण इतना रोज आप सोलमाला करते हो, इतना तपस्या करते 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 आप अंत में आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रभा जी बोले कि हम हरे कृष्ण जपना चाहते हैं बस शाश्वत काल के लिए। और आदमी पूछा नहीं नहीं आप भगवतधाम जाना चाहते हैं, तो जाकर क्या करेंगे आप, उधर भी हम जपेंगे प्रभा ने बोला, उधर हम भगवान का नाम लेंगे ऐसे। तो भगवान का भक्त इधर भी सेवा चाहता है और उधर भी सेवा चाहता है, ऐसे नहीं कि अभी मैं सेवा करूंगा, सेवा करने के बाद जब मेरा मोक्ष होगा तो मैं भगवान के सर के ऊपर बैठ जाऊंगा, ऐसा नहीं, हम भगवान बन जाएंगे नहीं तो भगवान में लीन हो जाएंगे, ये भगवान के भक्त कभी भी ऐसे सोचता नहीं। इसलिए हम देख सकते हैं कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, इस तरह बताया गया है। तो इसका मतलब क्या है, सिद्धिकामी जो होते हैं ना वो सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, करके दूसरों को दिखाना चाहते हैं, देखो मैं सोना बना सकता हूँ नहीं तो भस्म मेरे हाथ से भस्म निकलेगा, चंदन निकलेगा नहीं तो सोना निकलेगा चांद निकलेगा, ये दिखाना चाहते हैं। लेकिन भक्त लोग संतुष्ट हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि भगवान अनेक सिद्धियों को प्रकट करते हैं, है ना, जब भगवान सिद्धियों को प्रकट करते हैं उसको देखकर भक्त भगवान के गुणगान करता है, इच्छा नहीं करता कि मैं प्राप्त करूं सिद्धियों को। जैसे हम देखते हैं भगवान ऐसे 80 मील कूद मारे एक बड़े पहाड़ से, मालूम है सुना आपने, भगवान कृष्ण और बलराम जब जरासंध ने पूरा आग लगाया ये सारे पहाड़ के आमने सामने, भगवान ने क्या किया, कूद मारा 80 मील से भी ज़्यादा। तो भगवान ऐसे सिद्धियों को प्रकट करते हैं, तो भगवान ऐसे गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं अपने छोटी उंगली से है, हे भगवान पकड़ करते हैं अपने, वो तो भगवान तो योगेश्वर हैं। तो भक्त लोग इन लीलाओं को दूसरों को बताकर वो खुश हो जाते हैं। भक्त इच्छा नहीं करता कि लोग सोचे कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, लोग सोचे कि मैं बड़ा पंडित हूँ, भक्त इच्छा नहीं करता है। लेकिन वो संतुष्ट हैं किससे, ये समझने से कि भगवान त्रिकाल ज्ञानी हैं, भगवान को सब कुछ मालूम है। वेदा हम समतीतानी वर्तमानानि चार्जुन है भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदन कश्चन, भगवान सबसे बड़े ज्ञानी हैं। इस तरह भगवान की गुणगान करने से भक्त संतुष्ट रहता है। इस तरह भगवान की विग्रह की बहुत सुंदर सजाना भगवान को और उनकी तरह तरह के आभूषण पहनने में भक्त संतुष्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छे सुंदर सुंदर आभूषण पहनकर दूसरों को आकर्षित करूँ, इस तरह भक्त इच्छा नहीं करता है ऐसे। इस तरह भगवान को तरह तरह के व्यंजन को भोग चढ़ाऊँ, इस तरह भक्त इच्छा करता है, ना कि मैं बहुत अच्छे व्यंजन को व्यंजनों का स्वादिष्ट लूँ, ऐसे नहीं। एक बार चैतन्य महाप्रभु गए थे पुरी में सर्वभट्टाचार्य के घर में, तो उस दिन सर्वभट्टाचार्य अनेक भोग बनाया था उन्होंने। उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु को बोला कि देखिए आज मैंने जगन्नाथ जी को 56 भोग चढ़ाया है आज। जब महाप्रभु सुना बहुत खुश हो गए चैतन्य महाप्रभु, वाह बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छा किया, कितना अच्छा है कि जगन्नाथ भगवान इतने सब व्यंजनों को उनका स्वाद ले रहे हैं, ऐसे बोला उन्होंने। तो चैतन्य महाप्रभु को बिठा कर भट्टाचार्य जी ने बोला कि आइए अभी प्रसाद बाहर आ गए, अभी मैं आपको सब प्रसाद को मैं परोसता हूँ आपको। तभी महाप्रभु बोला नहीं नहीं मेरे लिए ये सब नहीं चाहिए, मेरे लिए थोड़ा बहुत थोड़ा दीजिए बस, ऐसे बोला उन्होंने। मेरे लिए बॉइल्ड वेजिटेबल दीजिए, बड़े से बॉइल्ड वेजिटेबल, हाँ उबला हुआ सब्जी है, पका हुआ सब्जी। तो ऐसे इसे हम क्या समझते हैं, चैतन्य महाप्रभु को बहुत खुश हुआ कि जगन्नाथ जी इतने स्वादिष्ट व्यंजनों को खा रहे हैं ऐसे। तो भक्त जो होता है किसमें आनंद लूटता है, जब भगवान को संतुष्टि प्राप्त होता है तभी भक्त को संतुष्टि प्राप्त होता है। When Krishna is pleased, devotee is pleased. And when Krishna's greatness is glorified, then devotee's heart is satisfied. जब भगवान कृष्ण की महिमा की गुणगान की जाती है तभी भक्त का हृदय बहुत प्रेम से आनंद से भर जाता है। जिस तरह भगवान की संतुष्टि होता है तभी भक्त को भी संतुष्टि होता है। तो भक्त का फार्मूला क्या है, एवरीथिंग इज फॉर कृष्णा एंड नथिंग फॉर माई सेल्फ, सब कुछ भगवान के लिए है और मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, ये भक्त का चेतना है। इस चेतना के साथ भक्त रहता है। ऐसे एक महान सन्यासी ने बताया कि जिस तरह भौतिक लोग जो होते हैं अगर लोग उनको रिकग्नाइज नहीं करते हैं, रिकग्नाइज अगर आपने कुछ किया है अच्छा काम किया है, हाँ पहचान, आपने कुछ बड़ा काम किया है अगर उसका पहचाना नहीं कोई तो आपको क्रोध हो जाता है ना, क्या है हमने इतना बड़ा काम किया है हमको हमारा नाम नहीं लिया वो मीटिंग में, इस तरह कभी क्रोध आ सकता है। इस तरह भगवान के महान भक्त क्रोध करते हैं जब भगवान की गुणगान नहीं किया जाता है, तभी जब भगवान की गुणगान नहीं किया जाता भगवान के भक्त क्रोध करते हैं। लेकिन भौतिक व्यक्ति क्या करता है, खुद की गुणगान जब नहीं करते हैं तभी वो क्रोध करता है ऐसे। इस तरह हम देख सकते हैं। तो हिरण्यकशिपु और प्रह्लाद को अगर हम तुलना करेंगे हम देख सकते हैं ये सबसे बड़ा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है हिरण्यकशिपु, और प्रह्लाद एक महान भक्त महाभागवत भक्त है। भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण शुरुआत में बताते हैं अपने अनेक शक्तियों के बारे में, हे अर्जुन मेरे बारे में मैं तुमको बोलूँगा इस अध्याय में, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशय समग्रम यथाज्ञा शशि तत्णु। तो भगवान अपने शक्तियों के बारे में बताते हैं, रसोहम अपसुकौंतेय प्रभास्मी शशि सूर्यजो, इस तरह अनेक बताते हैं। प्रणव सर्ववेदेशु शब्दके पौरुषम ऋषु पृथ्वी, ऐसे अनेक बताते हैं। बलम बलवताम चाहम बुद्धिर्बुद्धिमताम अस्मि, मैं सब लोगों के अंदर जो बुद्धिमता है वो मैं हूँ, सबके अंदर जो बल है वो भी बल मैं हूँ, हाँ, जो पानी का रस है वो भी मैं हूँ, हाँ, जो सूर्य का प्रवाह है वो मैं हूँ। इस तरह भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, हाँ, क्या क्या उनके अंदर शक्तियाँ हैं, कैसे वो सब चीज़ों के रस वही हैं। कृष्णा इज एक्सप्लेनिंग हाउ इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड एंड द कॉज ऑफ एवरीथिंग। मैं कैसे सब चीज़ों का स्रोत हूँ, सब चीज़ों का सार हूँ मैं ही, हाँ, इस तरह भगवान समझाते हैं। तभी अर्जुन के मन में प्रश्न उठ सकता है कि भगवान अगर आप ही सबका स्रोत हो, ये सब चीज़ आपने बताया, कि सब लोग आपकी शरण क्यों नहीं लेते, इस तरह प्रश्न उठ सकता है ना। लेकिन भगवान ने बोला नहीं, इस दुनिया में सब लोग तीन गुणों में फंसे हुए हैं, इसलिए पुराणों में अलग अलग गुणों में जो है लोग उनके लिए अलग अलग पूजा दिया गया है। जो तमोगुणी लोग हैं उनके लिए शिव और दुर्गा जी की पूजा है, जो रजोगुणी लोग हैं उनको ब्रह्मा की पूजा है, इस तरह दिया गया है। जो सत्वगुणी लोग हैं उनके लिए राधा कृष्ण सीताराम और लक्ष्मी नारायण इनकी पूजा दिया गया है। तो भगवान ने बोला कि जो लोग गुणों में फंसे हुए हैं वो लोग मेरे शरण नहीं लेते। और भगवान ने बताया कैसे अलग अलग लोग इस दुनिया में अलग अलग चीज़ में फंसे हुए हैं। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यंते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना, इस तरह अनेक लोग बताते हैं। भगवान बताते हैं कुछ लोग ऐसे कार्यकलाप में फंसे हुए हैं फल की अपेक्षा करते हुए, और कुछ लोग नरों में अधम हैं, सबसे जानवर जैसे जीवन जीते हैं, और कुछ लोगों को ज्ञान है लेकिन उनका ज्ञान अपहरण किया गया है माया के द्वारा, ऐसे। और बताया कि कुछ लोग हैं असुर हैं, वो कभी भी भगवान का शरण नहीं लेंगे, भगवान के विरुद्ध ही वो काम करेंगे। इस तरह सातवें अध्याय में और नौवें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो भगवान बता रहे हैं दुरात्माओं के बारे में और महात्माओं के बारे में, हम समझ सकते हैं। पूरे शास्त्र में बहुत अच्छी तरह वर्णन है दुरात्मा कौन है महात्मा कौन है, लेकिन ये प्रसंग जो है प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के उस प्रसंग से हम समझ सकते हैं कि कोई भी किसी भी परिवार में जन्मा हो व्यक्ति, राक्षस की घर में भी, लेकिन अगर उसको एक महात्मा की संग मिल जाता है तो ऐसे व्यक्ति भक्त बन सकता है। जैसे प्रहलाद महाराज की जन्म हुआ था माँ के योनि में था, तभी नारद मुनि की संग प्राप्त हुई, हाँ, इसके कारण वो महान भक्त बन गया ऐसे। तो ऐसे महात्माओं की संग की बहुत ज़रूरत है। तो ये भागवत धर्म जो है उसको हम तभी समझ सकते हैं, इस तरह बताया गया भागवत के अंदर ही बताया गया है कि महाजनों के संबंध में हमें कथाएं सुनना चाहिए। जैसे प्रहलाद भी एक महाजन है, अगले हफ्ते हम सुनेंगे प्रहलाद महाराज के बारे में, वो भी द्वादश महाजनों में वो भी एक हैं। कैसे प्रहलाद ने भक्ति की भगवान की, उनकी एकाग्रता चित्त कैसा था, इतने तकलीफ उनके जीवन में आने के बावजूद भी कैसे उन्होंने भक्ति को नहीं छोड़ा, उनको भक्ति को इतने दृढ़ता के साथ उन्होंने पालन की। हम लोगों के जीवन में कभी कभी छोटा मोटा तकलीफ आता है, लोग बोलते हैं कि हमने माला कम कर दिया है ना, लेकिन प्रहलाद महाराज के जीवन में हम देखते हैं कितना तकलीफ उसने अपनाया। तो इस तरह हम भागवत पढ़ने से हमारे अंदर जो भक्ति शक्ति है वो बढ़ेगा, और हमारी इच्छा जो है भगवान की, भगवान को शरण जाने की इच्छा और भी हमें बढ़ेगा। और साथ साथ जो हिरण्यकशिपु की जो चेतना है जो हम बता रहे थे आज, ये आधुनिक दुनिया में वैज्ञानिक लोग जो हैं ये लोग हिरण्यकशिपु के अनुयायी हैं, क्योंकि जो हिरण्यकशिपु ने सड़क डाला है उसी सड़क के पीछे सब लोग भाग रहे हैं। क्योंकि हिरण्यकशिपु ने क्या सोचा, प्रभुपाद बता रहे हैं कि मनी एंड सेक्स, पैसा और इंद्रिय तृप्ति, ये दो ही जीवन का लक्ष्य है। कामोपभोग परमा एतावत इति निश्चिताः, ये दो ही जीवन का लक्ष्य है, काम उपभोग करना ही। इस तरह सोचकर वो कठोर परिश्रम किया। भगवद्गीता में भगवान बताते हैं मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, हर एक जीव इस दुनिया में घोर संग्राम कर रहा है। जीव संग्राम किस लिए, इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करने के लिए, लेकिन सब जीव हार जाता है, मृत्यु तक कठोर परिश्रम करता है और थक जाता है, और अगले जन्म में जाकर क्या वापिस वही संग्राम वही युद्ध में फंस जाता है बार बार जन्म जन्म में। लेकिन प्रभुपाद बताते हैं ईश्वर परिषद की एक तात्पर्य बताते हैं प्रभुपाद जी, सुंदर एक लाइन, वन शुड गिव अप दिस वन साइड अटेम्प्ट फॉर द एंडेवर फॉर गेटिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन। वन साइड अटेम्प्ट का मतलब क्या है, भगवान को दूर में रखकर हम अपने बलबूते पर रहकर इस भौतिक दुनिया के पदार्थों को लेकर हम क्या करेंगे, उसका उपभोग करेंगे। इस तरह जो सोचते हैं वो नंबर वन मूर्ख है, नंबर दो नहीं, नंबर वन। इस तरह शास्त्र बताते हैं, क्योंकि हम जो भी प्राप्त करते हैं भूमि से, जैसे धान्य, हवा, पानी, रोशनी, गर्मी, ये सब जो प्राप्त करते हैं वो सब भगवान ने ये सब चीज़ के आयोजन किया है। और जिस तरह जो हम सोना, चांदी, सल्फर, मैंगनीज और दूसरे अन्य धातुएं प्राप्त करते हैं भूमि से, वो भी चीज़ भगवान ने हमें दिया है इस तरह। तो ये सब चीज़ों को अगर कोई लेकर सोचेगा कि ये हमारे इंद्र तृप्ति के लिए है, उन चीज़ों को एक तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं, कारखाने बनाते हैं और अपने इंद्रिय भोग में जो लगाते हैं ना, उनको चोर कहला गया है शास्त्र में। सो प्रभा से सोसाइटी ऑफ थीव्स के नॉट बी हैप्पी, चोरों की समाज शांति और सुख से नहीं रह सकता है। लेकिन जब व्यक्ति समझता है कि ये जो शरीर दिया गया है किस लिए दिया गया है, शरीरम कलु धर्म साधनम, ये शरीर दिया गया है धर्म को अपना कर जीने के लिए। ये शरीर तो नश्वर है, लेकिन ये नश्वर शरीर का ये एक अच्छा गुण है, क्या है, इस शरीर को लेकर हम धर्म का धर्मपरायण बन सकते हैं। खास करके अगर हम भागवत धर्म जो है बहुत सरल है, क्या है भागवत धर्म, आंखों से भगवान की विग्रह का दर्शन करो, कानों से भगवान की दिव्य कथा को सुनो, कीर्तन को सुनो, जिह्वा से भगवान की गुणगान करो और प्रसाद को अपनाओ, इस तरह हाथों को हम ऊपर करके नाचते हैं, पाँव से हम मंदिर जाते हैं और तरह तरह की सेवाएँ करते हैं भगवान की, और मुख से हम भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भागवत धर्म है, प्रहलाद महाराज ने अपने पिताजी को बताया, यही भागवत धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है। जो धर्म है जो सब सारे चार पुरुषार्थों से ऊपर है और सरल, सबसे सरल है, और भगवान को आकर्षण करना बहुत आसान है इस भागवत धर्म के द्वारा, और भगवान हमको अपने धाम में अपना लेंगे इस धर्म के द्वारा, ये जीवन का लक्ष्य है। तो इसलिए भगवान ने हमको शरीर दिया है उनकी सेवा करके शुद्धिकरण प्राप्त करने के लिए। लेकिन मूर्ख जीव क्या करते हैं, भगवान को भी भूल जाते हैं, भगवान को नकारते हैं और इस भौतिक पदार्थ को लेकर उसको तोड़ मोड़ कर तरह तरह के चीज़ों को उत्पन्न करते हैं। जैसे प्रभा जी बताते हैं, बम को तैयार करके करोड़ों लोगों को मार डालते हैं, लोगों को जीवन नहीं दे सकते हैं, सिर्फ लोगों को मार सकते हैं बस। और जो भी आधुनिक दुनिया में आदमी पैदा करता है, सब तरह तरह की तकलीफों को पैदा करता है इससे। तो हिरण्यकश्यपु ने भी ऐसे ही संस्कृति को रचाया उनके समय में, लेकिन एक दिन क्या हो गया हिरण्यकश्यपु का, भगवान नरसिंहदेव आकर उसको पूर्ण तरीके से हरा कर मार डाला भगवान ने। इस तरह भगवान को बाजी में करके खुद की इंद्रियों को जो सामने रखने वाला सभ्यता है वो बहुत समय टिकने वाला सभ्यता नहीं है। जो बुद्धिमान लोग हैं उनको अच्छा है कि वो भगवान के भक्त जो हैं, महात्मा लोग हैं, महाजन की अनुयायी जो होते हैं, उनके पदचिन्हों को अपना कर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। अंत में हम ये एक श्लोक बोलना चाहेंगे, सब लोग अब दोहराइए, कलौ दोष निधे राजन अस्तिरेकान महान गुणा कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्तसंग परम व्रजेत। ये भागवत में बताया गया श्लोक, इसका मतलब क्या है, कलियुग जो है ये दोषों का एक सागर है, इसलिए अच्छा है कि हम दोषों को दिखाए नहीं दूसरों में, क्योंकि अगर आप दोष दिखाना चाहते हैं आपके हाथ तक जाएगा आपका, इतना दोष है लोगों में। कलयुग क्या है, दोषों का सागर है, कलो दोष निधे। लेकिन बोलते हैं हालांकि कलयुग दोषों का सागर है, लेकिन ये एक अच्छा गुण है कलयुग में भी। क्या है वो अच्छा गुण? अस्ति ही एकान महान गुणा, एक महान गुण है ऐसे कलयुग के समय में भी। ठीक है, सत्ययुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग। सत्ययुग सोना से तुलना किया गया है, सुनहरा युग है, और त्रेता युग चांदी, और द्वापर युग इन हिंदी ताम्रा, और कलयुग लोहा, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इसलिए बहुत हैं इतने कारखाने हैं, ये कलयुग है ऐसे। लेकिन ऐसे कलयुग में भी एक अच्छा गुण है, अस्ति एकान मन, एक ही अच्छा गुण है, क्या है? कीर्तनात एव कृष्णस्य, कृष्ण के कीर्तन करने वाले लोग कलयुग में रहेंगे, मुक्त संग परम प्रजेत। और वो लोग संघ में आएंगे, जैसे आप लोग आज संघ में आए हैं, संघ में आकर वो लोग क्या करेंगे? कृष्ण कीर्तन करेंगे। तो अनेक लोग काली कीर्तन करते हैं, गणेश कीर्तन करते हैं, तरह तरह के कीर्तन करते हैं, लेकिन उस कीर्तन में वेस्टर्न म्यूजिक को भी वो मिलावट कर देते हैं साथ साथ, है ना। लेकिन जो कृष्ण कीर्तन जो है वो शुद्ध कीर्तन है, जो शुद्ध घी, याद आपको बोला ना मैंने, शुद्ध घी से बना हुआ पदार्थ, इससे आपको व्याधि नहीं होगा, इसमें कुछ मिलावट नहीं है जो व्याधि पैदा करता है। क्योंकि हिरण्यकशिपु ने देवताओं की पूजा की, उसके अंदर क्या व्याधि आ गई? और भी चाहिए, और भी चाहिए, और भी चाहिए, वो व्याधि है। जैसे रावण ने शिवजी की पूजा की, क्या व्याधि आई उसके अंदर? राम की पत्नी को चोरी किया उसने। लेकिन भगवान की भक्ति की ध्रुव महाराज ने, हालांकि उसके हृदय में गलत इच्छा थी, लेकिन वो शुद्ध भक्त बन गए ध्रुव महाराज। प्रहलाद भी ऐसे ही शुद्ध भक्ति की, इसलिए शुद्ध घी की पदार्थ खरीदिए भागवत पुराण से। इस तरह बताते हैं कीर्तनात एव कृष्णस्य मुक्त संग परम भजेत। और जो लोग इस तरह के कृष्ण कीर्तन करने वाले संघ जो है, कृष्ण भावनामृत संघ, इसमें जो आते हैं और हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, वो लोगों को क्या गति है? मुक्त संग परम ब्रजेत, वो मुक्त होकर भगवान के पद कमलों को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण। निरंतर श्रीमद्भागवतम की श्रीला प्रभुपाद।